भगवान गीता में कहते हैं टूटे बुज तम पर्वत श्रावण सूर्य ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञातवा मोक्ष के सुभाष राज विद्या राज बुद्धम पवित्र विदमोत्तम प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुकं कर्तुम अभ्यम ऐसा पुरुषा धर्मस्याच परम तप अप्राप मान निवर्तन से मृत्यु संसार वर्ष मनी भाव यह है। भगवान कहते हैं अर्जुन को मैं जाके आरंभ में जीवन सूते बुद्ध तमन पर्वत श्रावण सूर्य तू जो मुझ में दो दृष्टि वाला नहीं है यानी मेरे गुणों के बीच के मैं दोष की कल्पना नहीं करता है इस वास्ते तू इस गोपनीय विषय के सुनने के लिए पात्र है तो ये मैं तुम्हारे को गुज्जतम जो बात कहता हूँ एक तो बात होती है गोपनीय गुज्ज और एक होती है गुज्जतर और एक होती है गुज्जतम तो यह बात जो सो गुज्जतम है माने गोपनीय से भी गोपनीय है इदम तू ते गुज्जतम परमक्षा में अनसूय कैसा जो तू है कि गुणों में दोष नहीं लगाने वाला ऐसा ऐसे तेरे प्रति मैं कहता हूँ क्या बात है ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान के सहित जो ज्ञान है अत्यंत गोपनीय है वो जिसके आत्मा मुख शेषवा जिसको जान करके अशुभ जो संसार है उससे ये जीव मुक्त हो जाता है फिर इसकी आज विशेषण देकर के इसकी खूब भगवान प्रशंसा करते हैं महिमा गाते हैं ऐसी चीज है कि राज विद्या राज बुद्धम पवित्र मिदमोत्तम प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुसुकं कर्तुमभ्यम यह जो विद्या है मैं जो तेरे को कहूंगा वो कैसी चीज है कि दुनिया में जितनी विद्या है उसकी राजा होने से इसका नाम राज विद्या है ये अध्यात्म विषय है और अध्यात्म विद्या जो है एक प्रकार से सब विद्याओं के बीच के माँ अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है यह बात भगवान ने दृष्ट विद्या में कही राजबुद्धम और जितना जो गोपनीय जो विषय है उसके बीच के माँ ये राजा होने से राजबुद्धम इससे बढ़कर और गोपनीय कोई वस्तु नहीं और पवित्रम बहुत ही पवित्र है कैसा भी पापी हो वो भी एक प्रकार से इससे सर जाता है शुद्ध हो जाता है तो यह बहुत ही पवित्र है इसके समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है और उत्तम श्रेष्ठ भी है दामी चीज है और इसका फल भी एकदम प्रत्यक्ष है जैसे कोई प्यासा आदमी और जल पीता है तो उसकी पिपासा प्रत्यक्ष में उसी वक्त मिल जाती है इसी प्रकार से भी संसार भाव से जो ये जल रहा है इसको पाकर इसे परम शांति को प्राप्त हो जाता है इसका फल एकदम तुरंत से मिल जाता है ये नहीं कि इस जन्म में तो करो दूसरे जन्म में इसका फल मिलेगा ऐसी बात नहीं और ये चीज ऐसी है कि धर्म मैं है परम धर्म है यज्ञ दान तप आदि जो ये धर्म है शास्त्र गीत कर्मों का जो आचरण करना वो धर्म है और परमात्मा की जो भक्ति और ज्ञान का जो विषय है वो परम धर्म है ये भी कहा जाके साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी और ये अविनाशी है ये साधन भी अविनाशी है, इसका फल भी अविनाशी है। ये साधन जो है तो महाप्रलय के माँ भी भगवान के माँ नारायण के माँ ही ये आपने विलीन हो जाता है और महाशक्ति आदि में फिर नारायण से ये प्रकट होता है। इस वास्ते ये साधन जो है ये भी नित्य है और इसका फल तो नित्य है ही, इस वास्ते इसको अविनाशी कहा है। इतना होने पर साधन में किसी कठिनता होगी तो कहते हैं नहीं, सुखम कर तुम, करने में भी बहुत सुगम है। ऐसी बात है तो सब दुनिया के लोग इसको क्यों नहीं करते, क्या सबका अधिकार नहीं? नहीं, मात्र मनुष्य का अधिकार है। जब मात्र मनुष्य का अधिकार तो सब कोई करते क्यों नहीं? तो कहते हैं कि असर्दाना पुरुषा धर्मचार्य परम तप है, अप्राप मांगनी वर्षंते मृत्यु संसार वर्ष बनी। अच्छा धर्मचर्य, इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वह पुरुष मुझको नहीं पा करके मृत्यु रूप संसार सागर के मां भ्रमण करता सिद्धता है। तो मुझको नहीं पा करके यह शर्त क्यों? ये कहना बहुत काफी था कि जो इस साधन के मां विश्वास नहीं करता है वह पुरुष संसार के मां जन्मता मरता रहता है। इतनी बात ही बहुत काफी थी। मुझको न पाकर के क्या आपके पाने का एक प्रकार से कोई चांस थी क्या? बोले चांस नहीं, अधिकार था एकदम। इसको मेरी प्राप्ति जो है तो अवश्य होनी चाहिए थी, क्योंकि असंख्य कोटि जीव हैं, उनके बीच के वहां समझो कि मनुष्य तो संख्या वाले हैं, संसार के बीच के वहां 2 अरब और कितने करोड़ मनुष्य हैं, जीवों की कोई संख्या नहीं। तो अनंत कोटि जीवों के बीच के वहां जब इतने जो मनुष्य कम संख्या में हैं, तो भगवान का ये कहना है उसी को मनुष्य बनाया जाता है कि जो मनुष्य के लिए पात्र होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये समझो कि अपनी आत्मा का कल्याण सकता है, कर सकता है या मुझको प्राप्त कर सकता है, जो मैं इस प्रकार से समझता हूँ उसी को मनुष्य बनाता हूँ। तो मैं इनको मनुष्य बनाया तो मेरी प्राप्ति के मां इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे कोई राजा का लड़का होता है तो राजा का लड़का युवराज पद के ऊपर अधिकारी है, जन्म सिद्ध उसका राज के ऊपर अधिकार है राजा के लड़के का। इसी प्रकार से थी इस मनुष्य का जन्म सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार है। किंतु दुख की बात है कि मनुष्य का शरीर पाकर के भी परमात्मा की प्राप्ति न हुए तो इसके बीच के वहां समझो कि हमारे लिए शोक की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है, और क्या कहें। दुआ इसमें हमारी मूर्खता के और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तो अब ये विचार करना चाहिए, जो मनुष्य ने ये विचार करना चाहिए कि जब परमात्मा ने हम लोगों को एक प्रकार से मनुष्य बनाया है और मुक्ति के लिए बनाया है, यूं कहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण, ये सब एक ही बात है। और ये भी समझना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की, जिन पदार्थों की आवश्यकता है वो सब बातें मनुष्य मात्र में है। ऐसा दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है जो प्रयत्न करने के ऊपर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य है ही नहीं। हम लोगों के बीच के वहां जो पापी से भी पापी जो पुरुष है वह पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हम लोगों के बीच के माँ जो जाति के माँ नीच से जो नीच है वह भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान खुद इसी अध्याय के माँ एक प्रकार से इस बात को कहते हैं, अति तेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भा साधु रेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थित पुरुषो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सत्संगति उनके प्रति जानी ही नैमे भक्त प्रणस्पति। का ये अर्थ होता है कि हे कुंती, यदि कोई अतिशय दुराचारी पुरुष है, पापाचारी पुरुष है, जन्म जन्मांतर के उसके इकट्ठे हुए पाप हैं, बड़ा भारी पापी है, माने एक पापियों के वहां अद्वितीय है, ऐसा शुद्राचारी पुरुष भी यदि मुझको अनन्य भाव से भजता है, यानी एक निष्ठ होकर के भजता है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की भक्ति करती है एक निष्ठ होकर के, इस प्रकार से भी जो अविचारणी भक्ति के द्वारा जो मेरा भजन करता है उसको कहते हैं कि भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से भजता है, मेरे स्वा और दूसरे किसी को नहीं भजता, ऐसा केवल मात्र एक मेरा ही भक्त हो जाता है, उसको साधु समझना चाहिए। क्यों साधु समझना चाहिए? कि वो जल्दी महात्मा बनने वाला है, जल्दी वो धर्मात्मा बनने वाला है, इसलिए उसको साधु समझना चाहिए। क्यों साधु समझना चाहिए? कि समग्र व्यवस्थित वह पुरुष अच्छी प्रकार से थी मुझ परमात्मा में निश्चय वाला है। मुझ परमात्मा में निश्चय वाला क्या? कि परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं, इस प्रकार का उसके हृदय के मां निश्चय है। इस निश्चय के प्रभाव से भी वो क्षिपण भौतिक धर्मात्मा वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। शीघ्र ही जन्म का काम नहीं, जन्म जन्मांतर का काम नहीं, किसी जन्म के थोड़े हिस्से के मां वो धर्मात्मा बन जाएगा। केवल धर्मात्मा ही नहीं, सदा रहने वाली जो शाश्वत जो शांति है उसको वो प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति होती है उसका नाम शाश्वत शांति है, तो उसकी भी उसको प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती, तुम ये निश्चय समझो कि मेरा जो भक्त है उसका तुम पतन नहीं होता। ये बात सिद्ध हो गई कि कैसा भी पापी क्यों नहीं हो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और वो भी शीघ्र हो सकती है। फिर हम लोग ये मन में धारणा करें कि हमारे को तो इस जन्म में प्राप्ति होनी संभव नहीं, तो ये बिल्कुल हमारी मूर्खता है। ये भगवान कहते हैं तो हमको निराश क्यों होना चाहिए? दूसरी बात, हम लोगों के बीच के मां कोई जाति से भी नीचा हुए, यह समझो कि जैसे स्त्रियां हुए बड़े पुरुषों को तो ये काम प्राप्त हो सकता है, ये परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, किंतु स्त्रियों को कहां? तो भगवान कहते कि नहीं, स्त्रियों को भी। यदि कोई जाति का शूद्र है और वो कभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए या शूद्रों के लिए नहीं, तो भगवान कहते नहीं। ये तो लोगों की अपनी एक प्रकार से धर्म व्यवस्था अपने कार्य के विभाग के लिए है, मुक्ति के विषय के बीच के वहां सब अधिकारी है। यदि कहते जो अछूत जाति है ढेर चुमार मंत्र भंगी उनको भगवान नहीं मिलते होंगे, तो भगवान कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी प्राप्ति के वहां तो सबका अधिकार। अब भगवान कहते हैं कि उसके वास्ते उपाय उपाय वो जो केवल मात्र मेरी एक शरण है और कुछ, માણી પાળ પાપી તો જેથી શું પાપ યોગ્ય સ્ત્રીઓ વૈશા તથા શુદ્ર તેથી અંકિત પ્રાંત જે પાપ મેરી શરણ લેકર સ્ત્રીઓ વૈશ હો ઓર ચાહે શુદ્ર હો ઓર ચાહે પાપીઓની ભી ક્યુ ન હો અછૂત જાતિ ભી ક્યુ ન હો મેરી શરણ લેકર કે વે ભી પરમ ગતિ કો પ્રાપ્ત फिर ये शंका होती है कि इस प्रकार सभी परम गति को प्राप्त हो जाए तो फिर ब्राह्मण जो है क्षत्रिय जो है उनके बीच में फिर क्या विशेषता रही बोले उनकी विशेषता भी है उनके लिए ये बात है भगवान कहते हैं कि इन पुनर्ब्राह्मणा पुण्य दंताराज विशेषता फिर जो एक प्रकार से थी ब्राह्मण भी है और पुण्यात्मा भी है उसका उद्धार हो जावे इसमें तो फिर कहना ही क्या है मेरी शरण लेकर के जब ऐसे पापियों का उद्धार हो जाता है नीच जाति वालों का उद्धार हो जाता है तो जाति से भी उत्तम है और आचरण से भी उत्तम है ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा जो ब्राह्मण हैं वे मेरी शरण आ जावे और उनका उद्धार हो जावे इसमें तो कहना ही क्या है और जो क्षत्रिय है राज ऋषि है और वे मेरी शरण आ जावे तो उनके उद्धार में तो कहना ही क्या है जब समझो कि नीच जाति के लोग और जबकि एक प्रकार से वैश और शूद्र जाति के लोग और अस्त्री का भी कल्याण हो जाता है तो फिर उत्तम जो ब्राह्मण है राज ऋषि जो क्षत्रिय है जिनकी जाति भी उत्तम है और जिनके आचरण भी उत्तम है वे जब मेरी शरण आ जाए उनका तो उद्धार हो जाता है इसमें कहना ही क्या अभिप्राय क्या उनका तो तुरंत उद्धार हो जाता है तो इसे यह समझना चाहिए कि इस प्रकार से मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है तो हम लोग इस प्रकार से मनुष्य के नाते परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं फिर ये बात रही कि अधिकारी तो हैं, किंतु फिर हम लोगों के पास में सामर्थ्य तो होनी चाहिए हम लोगों के पास में सामर्थ्य नहीं हुए तो अधिकार क्या काम आवे बोलो नहीं हम लोगों के पास सब में सामर्थ्य है दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके बीच के मां परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति न हो क्यों परमात्मा ने दी है जो मनुष्य का शरीर दिया है तो सात के बीच में उस वक्त में इसको शक्ति भी दी है इसको ज्ञान भी दिया है इसको सारी बातें दी है तो हम लोगों के बीच के मां वो सारी बात मौजूद है मौजूद होकर के हम उसको क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं हम लोगों में ऐसी शक्ति है इस प्रकार का जो विश्वास होना चाहिए उसकी कमी बिल्कुल विश्वास नहीं है तो नहीं किंतु उसकी कमी अर्जुन भगवान की शरण था इसमें कोई शंका की बात नहीं किंतु कुछ उसमें कमी है उस कमी की पूर्ति भगवान ने गीता का उपदेश देकर करके कर हम उस बात को भूले हुए जैसे हनुमान अपने बल को भूले हुए थे संपाती गीत ने देवी ये खबर दे दी कि गीता रावण की अशोक वाटिका में है किंतु सोयोजन का समुद्र भी सफल तो सभी बांदर इकट्ठे होकर के विचार करने लगे किसी ने कहा कि मैं 10 योजन दान करता हूं किसी ने कहा कि मैं 20 योजन दान करता हूं अंगद ने कहा कि मैं दान तो करता हूं सागर को किंतु वापिस आने के मां संदेह है उस समय के बीच के मां जामवंत जो है ऋक्षराज उसने हनुमान से कहा कि हनुमान तू कैसे चुप बैठा है पर तेरी तो बड़ी भारी शक्ति है तो अपनी शक्ति की तरफ क्यों नहीं चाल करता है तू कैसे बैठा है कुछ ही भगत है। हनुमान के फिर से दृष्टि माँ वो उपदेश लग गया और उसके भीतर के मन जो बल तो था ही, बस एक प्रकार से हनुमान कहने लगा। अध्यात्म रामायण में बतलाया है कि भगवान के नाम के बल के ऊपर मैं इसको गोपद की मापक नाम सकता हूं। भगवान के नाम के बल के थी संसार सागर को लांग जाता है, फिर ये तो क्या चीज है। इस प्रकार से कहकर के हनुमान ने अपना बड़ा भयंकर रूप धारण किया और समझो कि उस सतयोजन के सागर को लांग ले। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो शक्ति हम लोगों के भीतर में मौजूद है। संसार सागर के लांगने की शक्ति हम लोगों के मां मौजूद है, किंतु हम लोगों के बीच के मां उसका जो एक विश्वास नहीं है, एक प्रकार से ज्ञान नहीं है, इस कारण से हम लोग एक प्रकार से उसे वंचित हो रहे हैं। किसी के घर के बीच के मां पार्क पड़ा है, किंतु उसको ज्ञान नहीं है कि मेरे पास में पार्क है, इस कारण से वह दरिद्रता को भोग रहा है, दरिद्रता को भोग रहा। तो साक्षात परमात्मा हमारे सबके हृदय में विराजमान है, उसके ज्ञान न होने के कारण से हम लोगों की यह दुर्दशा हो गई। तो उसके ज्ञान की आवश्यकता है, जिस ज्ञान जो है उसको एक प्रकार से केवल ज्ञान करा दिया और जामुन ने दिया नहीं कुछ भी हनुमान को। हनुमान के भीतर में वो शक्ति तो थी, केवल मात्र जामुन ने वो बात बतला। इसी प्रकार संसार के मां महात्मा लोग जो हैं हम लोग को बतला देते हैं, एक प्रकार से वो चीज तो हमारे अंदर है, वे बतला देते हैं। उसके लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो हम लोगों के मां मौजूद, उसके लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता है वो हम लोगों के मां मौजूद। संसार में कोई भी जीव है उसमें पाप भी है, पाप का भी संग है, पाप के भी संस्कार और पुण्य के भी संस्कार। कोई भी ऐसा एक भी जीव आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें पाप ही पाप और पुण्य नहीं, कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके मां पुण्य ही पुण्य और पाप न हो। यदि पाप न हो तो उसका जन्म ही क्यों होता। ये हो सकता है कि किसी में पाप अधिक है और किसी में पुण्य अधिक है। इसी प्रकार से संसार के जिसके मां जो गुण जो है उत्तम गुण, जिसको हम देवी संपदा के लक्षण कहते हैं, गीता के 16 अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों में देवी संपदा के लक्षण, देवी संपदा के लक्षण का मतलब यह है कि असुरी संपदा के लक्षण यह है कि उसके मां दुर्गुण माने एक प्रकार से समझो कि खराब भाव, और उसको कहते हैं असुरी संपदा। दुर्गुण और दुराचारों को असुरी संपदा कहते हैं, सद्गुण और सदाचारों को देवी संपदा कहते हैं। तो देवी संपदा के लक्षण और असुरी संपदा के लक्षण ये सभी एक प्रकार सभी मनुष्यों में होते हैं। किसी में देवी संपदा अधिक होती है, किसी में असुरी संपदा अधिक होती है। तो हम लोगों के बीच के मां गुण भी है और अवगुण भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, सदाचार भी है और दुराचार भी है। सभी वस्तुएं सभी मनुष्यों के बीच के मां है। तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम लोगों में जो उत्तम जो गुण है, हम लोगों के बीच के मां जो उत्तम पुण्यों का जो संस्कार है, हम लोगों के बीच के मां जो एक प्रकार की शक्ति विशेष जिसको हम प्रभाव कहते हैं, हम लोगों के अंदर के मां ज्ञान जिसको कहते हैं, हम लोगों के अंदर के जिसके मां जिसको श्रद्धा कहा जाता है, पैदा कहा जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों के बीच के वहां बीज रूप से मौजूद है। जो बीज रूप से मौजूद है तो वो अधिक मात्रा में होना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। एक जो अग्नि की चिंगारी है और उस चिंगारी को ईंधन मिले और हवा मिले तो वो समझो कि ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है, वृद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। तो इसी प्रकार से भी हम लोगों के भीतर के मां वो शक्ति मौजूद है, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। जैसे एक अग्नि की चिंगारी अग्नि का अंश है, इस प्रकार हम उस परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा में जो चीज मौजूद है उसका कुछ अंश हम लोगों के मां भी है, क्योंकि हम खैरे तुलसी के अंश, हम लोगों के मां चेतनता भी है और हम लोगों के बीच के मां जो ईश्वर की जो प्रकृति है सत्रम तीनों गुणों मई उसका भी अंश हम लोगों के बीच के मां है। इस बात को सोच करके और हम लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपने में जो शक्ति है उस शक्ति की तरफ ख्याल कर करके और उसका सत उपयोग करना चाहिए। हम लोग एक प्रकार से भी अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, ज्ञान को भूले हुए हैं, किंतु हम लोगों में वो चीज है। हम लोगों में जितना जो ज्ञान है उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों में जितनी शक्ति है उस शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है वो शक्ति बड़ शक्ति परमात्मा नहीं तो हमको वो शक्ति दी है, तो परमात्मा का द्वार तो खुला हुआ है। वो तो एक प्रकार से थी और भी शक्ति देने के लिए तैयार है। जो कोई मनुष्य किसी महाजन के पास में 10,000 रुपया उधार जाकर के और व्यापार करता है और पूंजी बढ़ाता है और महाजन को समझो कि ब्याज और रुपया देता रहता है तो महाजन की खातरी हो जाती है और भी महाजन उसको अधिक रुपया दे सकता है। काम पर उसे महाजन का विश्वास पात्र बन जाता है तो महाजन उसको और भी अधिक पूंजी दे सकता है। तो जो भगवान का विश्वास पात्र बन जाता है उसको भगवान क्यों नहीं देंगे, किंतु जो महाजन की रकम जाकर के थी और उस सब रकम को जब नष्ट कर देता है और फिर जाकर के रुपया मांगता है और महाजन समझता है कि ये तीन रकम को बर्बाद करता है, सब रकम को बर्बाद कर दी और फिर भी तेरे पास आया है, तो फिर महाजन उसको कुछ भी नहीं देता। इसी सभी का कहना है आए से कछु लाभ को खोय गले सब मूल फिर जाओगे से पा पले पड़ेगी धूल पिया राम चंद्र की। हम लोग इस संसार के वहां किसी लाभ के लिए आए थे और जब यहाँ से मूल को भी गंवा करके जावेंगे खेत के पास में तो फिर हमारे को एक प्रकार से थी समझो कि अपने धन नहीं मिलेगा, पले में धूल ही पड़ेगी। तो यह शेष कौन है कि यह शेष जो है तो धर्मराज और ये जो जीव है ये ऋण देने वाला है और हमको जो मनुष्य